कब श्रावण महीना आए तो हम अपने पिता के घर में जाएंगी और वहां स्वच्छंद रूप में झूले में झूलेंगी और कृष्ण से स्वच्छंद रूप में मिलेंगी। इसलिए एक दो महीने पहले से ही श्रावण महीने की प्रतीक्षा होने लगती है, विशेष करके ब्रज में। जावट में जितनी सखियां हैं सब एकत्रित होती हैं और सभी सोचती हैं कि अब पिताजी हमें बुलाएंगे, मैया बुलाएंगे। श्रीमती राधिका जी भी एक महीने पहले से ही ब्रज की तरफ में देखती हैं। हमें कोई आज तक कभी बुलाने के लिए नहीं आया, प्रतीक्षा करती। दिन पर दिन बीतते जाते हैं, उत्कंठा उनकी बढ़ती जाती है। जब श्रावण महीना आने लग गया दो एक दिन पर, तो उत्कंठा अत्यधिक उत्कंठा बढ़ गई और उत्कंठा बढ़ने से दो एक दिन पहले ही केवल देखती हैं घर के बाहर और भीतर कि भैया मुझे बुलाने के लिए आ रहा थे। भैया तो नहीं दिख पड़ा, उनका कोई गांव का बंजारा दिख पड़ा। बंजारा की लीलाएं श्रावण महीना आते ही रास में ये सब दिखाया जाता है, दिखलाते हैं सबको, रुला देते हैं। ऐसी बंजारा की लीलाएं होती हैं। बंजारा किसको कहते हैं? बन जा, हाँ, उसमें रा पीछे से लगा दिया गया। अर्थात उनका कोई घर द्वार नहीं है, ये मतलब उनका कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, किंतु स्त्री पत्नी बेटा बेटी पूरा परिवार है उनका और उनका घर टेंट है। गाड़ियों में बैठ कर आज यहाँ कल वहां ऐसे घूमते रहते हैं, किंतु वो घूम फिर करके बरसाना में आ जाते हैं। हम लोगों ने भी कुछ दिन पहले बंजारा को गोवर्धन में देखा, अभी भी हैं, अब तो वो बस गए, कुछ बहुत कुछ व्यवस्था कर दी गई। नहीं तो पहले बंजारों का चलता था, देश विदेश में वो घूमते फिरते रहते थे। उन्होंने कहा गाँव का परिचित कोई बंजारा दिख पड़ा, बस देखते ही और वो रोने लगी और उससे बुलाया और बातचीत करने लगी। बंजारे तुम कहां से आ रहे हो? तो बरसाना से। तुम बंजार कब लौटेगा बरसाने? तो जब कहेगी तुम भी लौट जाऊंगा, तो तुम कल ही लौट जाओ। और वहां लौट करके मेरे पिताजी से मिलना, मेरी मैया से मिलना, मेरे भैया से मिलना। उन्होंने उन्हें कहना कि आप अपनी बेटी को भूल गए, मैं महीनों से प्रतीक्षा कर रही हूं, यह श्रावण का महीना आएगा। करते करते बड़ी उत्कंठा से करते करते श्रावण महीना है और अभी तक हमको बुलाया नहीं गया। मालूम होता है हमको सभी लोग भूल गए और ये कह करके रोने लगे। बंजारा भी उनकी यह दशा देख करके वो भी रोने लगे। परस्पर जो बातें हुई, मैं जाने कितनी कितनी बातें पूछ रही हूँ। पिताजी कभी हमको याद नहीं करते, मैया भी भूल गई, एक भैया था वो भी भूल गई, मेरी एक छोटी बहन है तो वो भी मुझको याद नहीं करती। बंजारा बोला कि मैं अभी लौट करके जाऊंगा और तुम्हारे पिताजी को मैं कह दूंगा। वहां जाकर के राधिका जी की स्थिति वो वर्णन करता है। ऐसे ही समझना, जितनी सखियां हैं, विशाखा जी की शादी भी वहीं पर है, अनंग मंजरी की शादी भी वहीं पर है, ऊंचा गांव की ललिता जी हैं, उनकी भी शादी पास में ही है, गोवर्धन नामक एक वाले से उनकी शादी हुई थी, चंद्रावरी की थी, गोवर्धन बड़ा भारी मल्ल था और कंस का वो प्रधान मल्ल था। तो इसी तरह से जितनी भी गोपियां थी, राधा जी की विशेष करके सहेलियां 8 विभिन्न जगहों से इनकी यही जावत में या आसपास में ही शादियां हुई, अनंग मंजरी, रति मंजरी और सब रूप मंजरी, ये सब उधर ही आसपास में शादी हुई। वृंदा जी की शादी इस वृंदावन में हुई थी, ये वृंदावन की निवासी है और वृंदावन की अधिकारिणी देवी है, यही इस वृंदावन को सुरक्षित करके और बड़ी सुंदर बनाती है। पशु पक्षी की पतंग जितने सब इनके अधीन रहते हैं, जैसे जिसको अधिकार देती हैं, इसको जैसा कहती हैं परिचालित करती हैं, ऐसा ही वो सब लोग कृष्ण के लीला के उपयोगी सब वृंदावन को सजा रखा है। उन्होंने इस राज्य को श्रीमती राधिका जी को दे करके और उसे वृंदावनेश्वरी उनको ये उपाधि दिया है। सब सहेलियां मिलती हैं वहां। पहले तो कृष्ण की लीला हुई गोकुल की, गोकुल के बाद में 3.5 वर्ष के बाद में कृष्ण छठी करा आ गए और 3.5 वर्ष के होंगे तो राधा जी कितनी वर्ष की होंगी,
15 दिन
छोटी, और भी सहेलियां जैसे ललिता जी हैं 27 दिन बड़ी, विशाखा जी उनके बराबर की उम्र वाली, इसी तरह से सब सखियां उस समय में छोटी छोटी रहती, उस समय में कोई भी संपर्क नहीं। वृंदावन में आने के बाद में ये कुछ बड़ी चलने फिरने वाली ये सब हो गई, कृष्ण भी बछड़ों को चराने लग गए, तब परस्पर में मिलन हुआ। इसके बाद में घूमते घूमते राधा कुंड इत्यादि से होकर के दीक में गए, वहां से फिर कुछ दिनों के बाद में चले गए काम्यवन में। काम्यवन में कृष्ण की मैया की पिताजी का घर है
लंका।
इसके बाद में वहां से और कुछ बड़े हो जाते हैं तो फिर खेलन वन में जाते हैं। खेलन वन तक में राधा जी पौगंड अवस्था को पार कर लेती हैं, कृष्ण भी पौगंड अवस्था को पार कर लेते हैं, इसलिए उसका नाम खेलन बन पड़ा। खेलन बन माने क्या, राधा और कृष्ण के खेलने का वो बन है। इसके बाद में कृष्ण आ जाते हैं नंदगांव में और श्रीमती जी बरसाने में आ जाते हैं। उस समय में ये लोग किशोर किशोरी हो जाती हैं। उसी के बाद में यहाँ पर वहीं से आकर के यहाँ पर भी रासलीलाएं होती हैं और जहाँ तहाँ वृंदावन में भंडी बन में ये सब होती है। तो ये महीना खास करके झूलन का है। झूलन माने क्या, झूलना कृष्ण की बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जिसमें रास को बतलाया गया है उसमें सभी लीलाएं हैं, इतनी प्रकार की लीलाएं हैं, वो सभी रास में सम्मिलित है। रास एक दो दिन की लीला नहीं, बल्कि ये लीला कितने दिन की, ब्रह्मा के एक पूरी रात की लीला है, जिसमें हजारों लाखों रातें उसमें समा सकती हैं। इस यहाँ की हजारों लाखों इसमें करोड़ों रातें इसमें आ जाएगी। इसी से देख लो, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इसका डबल, द्वापर, तिगुना, त्रेता, चतुर्गुण और ये सबको मिला करके जितना होगा वो संधि का स्थान, सब मिला करके 4,32,00,000 वर्ष का एक दिन और इतने का ही हो गया रात। ये दोनों को मिला करके 365 से गुणा कर दो और इससे 100 से गुणा कर दो, ब्रह्मा की आयु
1,004 दिन,
ब्रह्मा जी की आयु
नहीं, एक दिन,
एक दिन, एक दिन में इतना हुआ, उतने दिन की रात हुई और इतना दिन तक ऐसा हुआ जो पल भर लगते हुए गोपियों ने देखा ये रात काल में कहाँ चली गई, किंतु उसमें सब प्रकार की लीलाएं हुई। होने पर भी श्रावण का महीना विशेष महत्व रखता है, विशेष ये महत्व रखता है। कृष्ण जी जरा राधा जी कुछ वाम्य भाव की हैं, मधु स्नेह से युक्त हैं। वाम्य भाव माने मदीय भाव, कृष्ण मेरे हैं, भक्ति का विचार, रस का विचार कृष्ण के तरफ से नहीं होता, भक्तों के तरफ से होता है भक्ति का विचार। कृष्ण रसमय हैं ये कौन कहता है, कृष्ण कहते हैं न कि भक्त लोग कहते हैं, उनके परिकर कहते हैं। इसलिए जहाँ भी भक्ति का विचार है, उत्तमा भक्ति का विचार है, साधन भक्ति का विचार है और उसके बाद में प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव इत्यादि का है, ये कृष्ण का वर्णन नहीं है, इसका वर्णन है गोप गोपी ब्रजवासियों का। ये बात कृष्ण में भी है, कृष्ण में नहीं है ये बात नहीं, किंतु विचार होता है भक्तों का। प्रेम कृष्ण में है, किंतु का कृष्ण का प्रेम ऐसा है एक कांच के समान है, उसके पास में कोई भी फूल रख दो उसी का रंग ले लेता है, सफेद हो, हरा हो, नीला हो, लाल हो, काला हो, वो उसका ले लेगा। जैसे ब्रजवासी लोग हैं माता पिता के भाव वाले, सखा के भाव वाले, पुत्र के भाव वाले, गोपियों के भाव वाले, गोपियां भी कितने प्रकार की हैं, एक दो प्रकार की नहीं, मुख्य रूप से ही 360 प्रकार की गोपियां हैं और उनके एक एक के सब जूथ हैं, जूथों में फिर गण हैं, गण में भी और कितने विभाग हैं, अनंत कोटि कोटि गोपियां हैं एक दो प्रकार के हैं और वो सब एक एक भाव हैं और वो सब भाव आठों में मिलते हैं और इन आठों में जो मिलता है उससे भी कुछ अधिक श्रीमती राधा। इसलिए इनका विचार होता है भक्ति राज्य में जो प्रेम कैसा है, कृष्ण का विचार नहीं होता, कृष्ण का इनके अनुरूप हो जाएगा, जैसा उनका रहेगा भक्तों का ऐसा ही होगा। जे जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा हि मया। इसलिए रास में समस्त लीलाएं होती हैं, उसमें दोला भी है, बंसी चोरी है, जितने मिलन का है और विरह का भी, कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं वो विरह का हो जाता है, इसलिए सभी उसमें है। किंतु श्रावण महीने का एक अपना वैशिष्ट्य, वो वैशिष्ट क्या है? कृष्ण गोपियों के साथ में, कृष्ण राधा जी के साथ में जो मिलना चाहते हैं, राधा जी में मदीय भाव होने के कारण और मधु स्नेह होने के कारण उनका प्रेम कुछ बाम्य भाव होता है। जहां ऊपर में हम लोगों ने आज सेवा कुंज में हम लोगों ने वो किया, श्री विग्रह को प्रकाश किया। राधा जी कभी भी कृष्ण के सामने मिलने के लिए उत्सुक हैं, बहुत उत्कंठित हैं, किंतु कृष्ण को जहां देख लिया ये कृष्ण मेरे लिए प्रतीक्षा, बस वहीं से लौट जाएंगे, मान कुछ कर लेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। प्रेम का स्वाभाविक यही वक्र भाव है, विशेष करके मधु स्नेह में, मदीय भाव में ऐसा है। कृष्ण जाएंगे कहां, वो तो मेरे हैं, 10 बार मनाएंगे। इसलिए सब समय जहां भी देखा जाता है हमारे गोसाई ग्रंथों में, या निकट आई और बस लौट जाती हैं, मिलती नहीं। सावन का महीना ऐसा है जो नहीं चाहने पर भी, माने चाहते हैं अंदर से, बाहर से नहीं चाहते, यही माधुर्य है। किंतु सावन का एक महीना ऐसा है जिसमें कृष्ण एक वर्ष तक जो प्रतीक्षा करते हैं, जो बात नहीं होती, ऐसे स्वच्छंद तरीके से और बड़े प्रेम से वो मिल जाती है। कैसे मिलती है? सावन का महीना आया, झूला लग गया, तब विश्वभानु महाराज ने अपनी प्यारी बेटी को बुलाया। कैसे बुलाया? श्री राम जी बुलाने के लिए गए। श्री राम जी राधा जी से बड़े हैं, काफी बड़े हैं, कृष्ण से भी ये बड़े हैं, करीब करीब उनके उनसे 2-4-10 दिन बड़े हैं या और कुछ बड़े हैं, बलदेव प्रभु जी के करीब करीब, और कृष्ण के बड़े प्यारे हैं, उनसे छोटी हैं श्रीमती राधिका, और उनसे भी वर्ष एक अनंत मंजरी जी छोटी। सुबह उन्होंने सिद्धाम को भेजा, जाओ अपनी बहन को ले आओ। सिद्धाम जी मिठाइयों का वो पहले हंडे टंडे चलते थे, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन है ना, उनमें खाजा और क्या क्या, फेनी और क्या,
घेवर,
बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयां बनती थी, और उसमें रख करके बांकी पर कंधे पर लेकर के आदमी उनके साथ में चलते थे। उसमें बेटी के लिए कपड़े और सब गहने इत्यादि सब भेजे जाते थे, सब मिठाइयों के साथ में, गनो अलंकारों के साथ में। सुमल जी जा रहे हैं, किंतु सोच रहे हैं आज विलंब हो गया है हम लोगों को वहां जाने में लाने, न जाने कितनी ओलहना देगी, रोएगी, वो प्रतीक्षा कर रही हैं। जब ये गए तो भैया का पैर पकड़ करके रोने लगी, भैया भैया, और रोते रोते बोली, गला पकड़ लिया ऐसे, भैया तुम लोग हमको भूल गए, पिताजी भी हमको विसार गए, मैया भी हमें विसार गए, कोई भी मुझे याद नहीं करता, मैं कितने दिन से प्रतीक्षा करती हूँ। सुबल भी रोने लगे, सिद्धांत भी रोने लगे, ये भी रोने लगे। फिर उनको शांत कराया, बोलिए अभी तुम तैयार हो जाओ, अभी तुमको हम लेने के लिए आए हैं, तुमको भी लेकर। फिर उनको बैलगाड़ी गई थी, बैलगाड़ी माने गाड़ा नहीं, उसमें 2 बैल बड़े सुंदर सुंदर मखमल उनको लगाए जाते हैं, सोने की सिंह लगा दी जाता है, पैरों में खूब, गले में चांदी की झालर और उनके घंटा, घंटा तो ये हल्दी छाप ये करके उसमें दे देते हैं। बड़े सुंदर सुकाम विश्वभानु महाराज के घोड़े, घोड़ों से भी अच्छी और उनमें गाड़ी तो दो एक आदमी बैठ सकता है। बड़े गलीचे और क्या क्या सब दे करके वो रहते हैं। अभी भी बड़े बड़े रईस जो होते हैं ब्रजवासी उनके घरों में रहती हैं वो गाड़ियाँ। केवल वो लड़कियों को लाने या कहीं अपने आराम से जाने के लिए होती हैं, बस उस पर बैठा करके और उनको ले आए। बड़ी मुश्किल से ले आए, जटिला नहीं जाने देगी, उनको सेवा सुन करके और ले आए। आने के गांव के पहले से ही रोने लग गई सब लोग, जितने लोग थे सुनवा जैसे तो लाली आ रही है। विश्वभानु महाराज भी लालू को अगवानी करने के लिए एकदम आगे आ गए और गांव के जितने भी लोग हैं सब की लाली है, महिलाएं भी वो सब लोग उनके लिए आते हैं। इसके बाद में दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हुई, उसको उतार करके घर में ले गए, सबसे मिली जुली। इसके बाद में अपने सहेलियों से भी मिली, सहेलियां भी अपने अपने से पिताजी के घर में आकर के और वहां से स्वतंत्र रूप से मिली। इसके बाद में ऐसा ही रोज झूले पर झूलती हैं, सखियां मिलकर के ही अपने सखी को झुलाती हैं। कृष्ण का वहां आना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई संबंध तो है ही नहीं उनसे, जे उनके घर के जमाई हैं। जमाई करने की बड़ी इच्छा थी ये कृष्ण हमारे जमाई हो जाए, वो क्या होती है ना विवाह करने के पहले
सगाई
भी हो गई थी, सगाई भी होने की हो गई थी, सब कुछ हो गया किंतु जोग माया ने सब बिगाड़ दिया, करने नहीं दिया। सब लोग चाहते, जसोदा भी चाहती हैं, जसोदा जी ने तो राधा जी के हाथ पीले भी कर दिए थे, प्राय हो ही गया था सब कुछ, सोच रहे जी हमारी बहू होकर के आएगी, किंतु यह बात नहीं थी। जोग माया ने किसी कारण से वो विशेष कारण जो कि रुक्मिणी सप्तभामा से भी इनके अधिक प्रेम इनका है, उस पार्थिव भाव को के कारण उन्होंने ये करना नहीं दिया। जोग माया ने ऐसा दिखलाया विवाह किसी के साथ में नहीं हुआ, कृष्ण के साथ नहीं हुआ, किंतु सबने सोचा देखा ये दूसरों से हो रहा, राधा जी की शादी हो रही है जावट में
अभिमन्यु,
चंद्रावली की शादी हो रही है
गोवर्धन,
उस समय में ये लोग सोच रहे हैं कि हमारी शादी हो रही है, किंतु किसी के साथ में जोग माया ने शादी नहीं करने दी। उन लोगों ने देखा भी नहीं, किंतु उन लोगों ने ये समझा कि हमारी इनकी साथ में हमारी शादी है। और जोग माया ने इन गोपियों के भी भाव में ये लाद दिया, कृष्ण यद्यपि हमारे प्राण प्रियतम है किंतु आज हमारी समाज की वजह से हमारी शादी इनके साथ है, और उन लोगों ने सजा हमारी शादी इनके साथ है, किंतु उन गोपियों के साथ में अपने पतियों का कभी भी जीवन भर कोई भेंट ही नहीं हुई, कभी भी भेंट नहीं हुई, इसका समस्त शास्त्रों में प्रमाण है। विशेष करके इन गोपियों की शादी कृष्ण से हुई इसके भी कुछ कुछ प्रमाण है, नहीं तो मर्यादा रखने वाले लोग जिनको भक्ति नहीं है वो लोग कुछ कहेंगे, इसलिए उनके लिए मौका नहीं दिया। जोग माया ने दो बार उनकी शादी कराई कृष्ण से, पहली बार तो हुई जबकि कृष्ण छोटे से अभी थे, नंद बाबा उनको गोदी में लेकर के जा रहे थे, वर्षा हो रही थी, काली मेघ चारों तरफ में काले काले मेघ थे, सघन कुंजों में गोचारण को देखने के लिए जा रहे थे नंद बाबा, और उसी समय में जब वेग थोड़ा 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 जबकि वर्षा होने लगी, काला अंधकार एक तो बंद और उसमें भी घना मेघ और भी काला हो गया, पथ नहीं सूझता था। उस समय में भांडीर बन के निकट गए नंद बाबा और उतने में देखा एक कोई छोटी सी किशोरी आई। अरे देखा ये तो बरसाने की हमारे मित्र की लड़की है। और देखते देखते उनके हाथों से ऐसे किया, कृष्ण उनके हाथों में चले गए। नंद बाबा देखते रहे, वो आगे बढ़ी, आगे जाने पर स्वयं किशोरी बन गई, कृष्ण भी किशोर बन गए, उनको उतार दिया। और फिर वही भांडीर बन में बट के नीचे इतने में ब्रह्मा जी आ गए, सब सखियां वहां पर आ गईं और आकर के वहीं पर ब्रह्मा जी ने वेद विधि के साथ में उनका विवाह करा, गांधर्व विवाह हुआ, किंतु वेद मंत्रों के साथ नहीं, ये तो राधा जी के साथ। और जिस समय में ब्रह्मा जी बछड़ों को हर करके ले गए और सखाओं को हरण किया, कंदरे में ला दिया, उस समय एक बरस तक कृष्ण ही बन गए, जितने बछड़े और बन गए सखा। और उस समय में कौन भी गर्गाचार्य जी ने ऐलान कर दिया, जितनी गोपियां हैं वो सब गोपियों की शादी कर दी जाए, लड़कियों की कन्याओं की सबको शादी, कुमारी कोई न रहने पाए। इस वर्ष अच्छा योग है, जिस लड़की की शादी हो जाएगी उसका पति अजर अमर रहेगा, वो कभी विधवा नहीं होगी और सब प्रकार का उसका सुहाग बना रहेगा, पति भी उसके वशीभूत रहेंगे और समृद्धि सब प्रकार की लौकिक पारमार्थिक सब समृद्धि रहेगी, इसलिए इस वर्ष सबकी शादी कर देंगे। इसलिए गर्गाचार्य के उपदेश से जो गर्भ में लड़के और लड़कियां थी भी उनको भी कर दिया गया, होने के बाद में हम लोग इसकी सगाई आज कर रहे हैं, पीछे शादी। इस तरह से जितनी भी लड़कियां कुआरी थी ब्रज में उस वर्ष सबकी शादी हुई। इसलिए वो शादियां किसके साथ में हुई, कृष्ण बने हुए हैं ना, छोटे बड़े गोपाल बने हुए हैं, किशोर भी हैं, उनमें सखा जो जितने थे, चार प्रकार के सखा हैं। कुछ सखा जो सुविध होते हैं कृष्ण से उम्र में बड़े होते हैं एक दो वर्ष, और कुछ सखा होते हैं वो कृष्ण से एकदम छोटे होते हैं, वो दास्य भाव युक्त होते हैं, वो कृष्ण से काफी उम्र में छोटे होते हैं, वो 5 से लेकर 8, 9, 10, 11 वर्ष के हो सकते हैं। कृष्ण को यदि मान लिया 12 वर्ष के या 15 वर्ष के हैं। और कुछ सखा होते हैं जो अत्यंत प्रिय हैं, श्रीदाम इत्यादि उनके समवयस्क होते हैं, और बीच में और भी सखा तरह तरह के होते हैं। तो छोटे से लेकर के बड़े तक उसमें सब प्रकार के सखा हैं। इसलिए जितनी वहां पर ब्रज में गोपियां थीं, कुंवारी लड़कियां, सबकी शादी उस समय में कर दी गई। इसलिए ये शादियां सब अनायासी कृष्ण के साथ में संपन्न हो गई। किंतु वो लोग समझ रही हैं कि ये हुआ है उन सखाओं के साथ में, किंतु हुई कृष्ण के साथ। यही पार्थिव भाव का सूचक है, यदि ऐसा योग माया नहीं कराती तो पार्थिव भाव गोपियों का नहीं। इसीलिए उस समय में उनके साथ भी अभिमन्यु इत्यादि के साथ में भी जो शादी हुई वो एक तरह से कृष्ण ही थे, ऐसा समझ, कृष्ण के ही वो प्रकाश हैं, तभी उन लोगों के साथ में उनकी शादी हुई। इसके बाद में अब ये झूलन का फिर प्रसंग ले आते हैं। अब झूला कुछ दिनों के बाद में एक महीने का झूलन, कृष्ण ने सोचा कि कैसे मिले, इसलिए उन्होंने भी एक सखी का रूप बना करके और उस झूले में बरसाने में झूला लग रहा है, या राधा कुंड में स्वच्छंद रूप से झूला लगेगा इस महीने में। वहां पर दोपहर में बसंत ऋतु सब समय छाई रहती है और वर्षा का भी काल होता है, उसमें वो मिलन होता है, वहां पर उनको झुलाती है। बरसाने में भी यदि झूलेंगे तो इसी प्रकार से वेश बदल करके, यहाँ पर वेश नहीं बदलना है, राधा कुंड इसलिए सबसे श्रेष्ठ स्थान है, वहां पर वेश बदल करके जाते हैं, झूला झुलाती हैं सखियां, बस पर सखियां बैठती हैं। अब ये कृष्ण जो वेश बना करके आए हैं, सबने कहा ये बड़ी अच्छी सखी है, और उसको उनके साथ में बैठा दिया, राधा जी के साथ। झूला जब चलने लगा, आठों सखियां मिल करके चार चार करके झूला रही हैं, बाजे भी बज रहे हैं, पखावर, सारंगी, मृदंग, करताल, बीना, झांझ, तरह तरह के सब बातें, सबका समस्वर से वो बज रहे हैं। अद्भुत श्यामा बज गई, श्यामा बजना होता है ना, श्यामा बज,
श्यामा संगीत,
श्यामा, श्यामा मन होता है, तो श्यामा